ओम शांति, ओम शांति। आप सभी विशेष बाबा के रतन इस ज्ञान सरोवर परिसर में ज्ञान रत्नों में डुबकी लगा रहे हैं और बाबा से थालियां भर भर के ज्ञान रत्न ले रहे हैं। बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देता हूं और ये ज्ञान रतन अविनाशी जो हम आत्माओं को भरपूर कर देते हैं। अभी जब मैं स्टेज पर आई तो बाबा का गीत बज रहा था, बाबा बाहें पसार कर हम बच्चों को बुलाते, आवाहन करते हैं। ये अपना अनुभव है, आप सबका भी होगा कि बाबा ने आप सबको बाहें पसार करके बुलाया, आओ मेरे बच्चे आओ। आवाज सुनाई दिया, दिया किस किस को दिया? अच्छा, और किसको नहीं दिया? अच्छा, दोनों में हाथ नहीं खड़ा कर रहे। बाबा हम बच्चों को बाहें पसार करके बुला रहा है, आओ बच्चे आओ। मैं आया हूं तुम बच्चों को भरपूर करने के लिए। भगवान बाहें पसार कर हम बच्चों को बुला रहा है और हम सभी बाप के बुलाए पर ही आए हैं। अगर बाबा ना बुलाता तो हम बच्चे आते है? हम तो उस दुनिया में अपनी मस्ती में मस्त थे, भक्ति में मस्त थे, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बुलाए, बाबा ने हम बच्चों को कहां कहां से ढूंढ ढूंढ करके निकाला है ना? बाबा कई बार कहते हैं मैं माली भी हूं, और बाबा माली ने एक एक फूल को चुन चुन करके ये ब्राह्मणों की माला में बाबा ने पिरो दिया है। बाबा ने एक एक को चुन के निकाला, कहां कहां से बाबा ने चुन के निकाला है, निकाला है ना? एक एक को बाबा ने चुन के ढूंढ ढूंढ के इस भरे संसार में से बाबा ने हम सबको ढूंढ के निकाला है, चुन चुन के निकाला है। हम भगवान के चुने हुए रतन, भगवान के चुने हुए फूल हैं। ये नशा है, है, है ना? भगवान के चुने हुए फूल है, भगवान ने हमको चुन करके निकाला है, भगवान ने आपको इस भरे संसार से ढूंढ करके बाबा ने निकाला है, या आपने बाबा को ढूंढा है? बोलो, किसने ढूंढा है? बाबा ने ढूंढा ना, हमने कहां ढूंढा? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम भगवान के बच्चे बनेंगे, भगवान हमारा बनेगा, भगवान से हम ये प्राप्तियां कर सकेंगे, कभी सपने में भी सोचा था? लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक एक को कोने कोने से चुन चुन के चुन चुन के बाबा ने निकाला है। तो मैं भगवान क्या चुना हुआ फूल हूं, और जब भगवान का चुना हुआ फूल हूं तो कैसा होगा? भगवान का चुना हुआ फूल कैसा होगा है? ये नाज है अपने ऊपर, रहता है नशा है कि मैं भगवान का चुना हुआ फूल हूं। अगर ये स्मृति में रहे कि मैं भगवान का चुना हुआ फूल हूं, भगवान ने मुझे चुन करके निकाला है, मैं वो रतन हूं, मैं वो माला का मणका हूं, मैं वो फूल हूं, अगर ये स्मृति सदैव रहती है तो चेहरा क्या रहेगा? फूल की तरह खिला हुआ रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं। वो एक स्लोगन लगाते हैं, एक बना हुआ है, मैं भगवान का चुना हुआ फूल हूं। हम भगवान के चुने हुए रतन है, चुने हुए फूल, तो हम फूल कैसे होने चाहिए, है ना? ये नशा होना चाहिए ना। बाबा को कितना नशा था? ब्रह्मा बाबा को नशा था ना, उर्लियों में सुनते हैं ना हम नशे का। बाबा क्या कहता था? मैं भगवान का सिक्की लद्दा बच्चा, एक ही बच्चा हूं जिस भगवान ने मेरे रथ को लिया है। कितना नशा था है? हमने वो नशा देखा, आंखों से देखा, अनुभव किया। आप सब भी अनुभव करते, बाबा मुरली सुनाता है, मुरली में हम सुनते हैं, वो नशे के बोल कितने होते बाबा के। और ये नशा ही हमारे जीवन को पुरुषार्थ कराता है, खुशी देता है, उमंग देता है, जो शास्त्रों के अंदर गायन है, यति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। वो गोप गोपियां कौन है? हैं? जो शास्त्रों में भागवत में कहते हैं वो हैं या हम हैं? शास्त्रों में तो वर्णन है श्री कृष्ण के पीछे फिदा थे, हम तो भगवान के गोप गोपियां। और अति इंद्रिय सुख क्या है वो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, है? और उस सुख का अनुभव हम इस संगम युग पर कर रहे हैं। हम बाबा के बच्चे बन करके, ब्राह्मण बन करके, ईश्वरीय संतान बन करके, वो गोप गोपी वाला सुख नहीं लिया तो क्या लिया है ना, उस सुख का अब अनुभव करना है और उस सुख का अनुभव करने तो आप भट्टी में आए हो। भट्टी में किस लिए आए हैं? सुख लेने के लिए आए ना, वो सुख प्राप्त करने के लिए आए। बाबा ने सबको सुख कैसे दिया है ना, बाबा ने जो बच्चों को शुरू से सुख दिया वो सुख कैसे दिया है? बाबा ने भी शुरू से ही ये तपस्याएं कराई, पालना की, पढ़ाई कराई है, वो अभी भी कर रहा है, परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ है। देखो पुरुषार्थ भी बाबा करा रहा है, पढ़ाई भी बाबा करा रहा है ना। मैं कल भी सुनाया था ना कि आप सभी तो मक्खन खाने आए हो है ना, ये नशा होना चाहिए कि हम मक्खन खाने पर आए। हमारी दादियों ने तो मेहनत की, मेहनत करके करके प्राप्त किया। आपको तो अभी सब तैयार मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हाँ, अभी हम तो जब इस ज्ञान के अंदर आए उस समय क्या था और आज क्या है। हम तो हमेशा कई बार कहती हूं कि हमारे लिए तो स्वर्ग यही है। स्वर्ग में क्या होगा है? स्वर्ग की महिमा हम करते हैं, स्वर्ग में क्या होगा? सब सुख होंगे, संपत्ति होगी, धन धान्य संपन्न होंगे। हमारे पास कोई कमी है क्या? हम भगवान के बच्चे बन करके हमारे पास कोई कमी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साथ कौन है ना, हमारे साथ कौन है? बाबा है, सर्वशक्तिमान है, सर्व समर्थ है, सर्व भंडारों का भंडार है, दाता है। तो हमारे जीवन में क्या कमी है, है? सत्ययुग में तो बाबा नहीं होगा, यहां तो बाबा है, सुख का अनुभव कर रहे हैं। सत्य में क्या पता होगा ये सुख कहां से लिया, ये पद कहां से पाया? खुशी होगी नहीं होगी? यहां के पुरुषार्थ पर अभी हमें इस समय पता है कि बाबा हम बच्चों को ज्ञान योग शक्तियों से भरपूर कर रहा है। सत्युग में थोड़ी यही नॉलेज होगी कि हमको वहां से हम लेके आए है ना। तो इस समय हमको जो सुख है, जो प्राप्ति है, वो कितनी है? तो हमेशा बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को आगे रख करके चलो। जो प्राप्तियों को रख करके चलता है उसका जीवन बहुत अच्छा चलता है। आज हमने हमेशा मेरे को बोला दीदी अपना अनुभव सुनाना, क्योंकि आपने बाबा की पालना ली, मम्मा की पालना ली, बाप दादा की पालना ली, अव्यक्त बाप दादा की पालना ली, दादियों की पालना ली। जो दादियां बाबा से पली, 14 साल तपस्या की, उन्होंने जो पाया, हम उन दादियों के भी अंग संग रह करके इतना अपने जीवन को भरपूर किया और आज ये अनुभव है, महसूसता है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। बाबा ने हर रीति से हमको भरपूर बनाया है। लेकिन बने कैसे? बात ये होती है ना, बाबा ने बनाया, बाबा तो सबको बना रहा है, लेकिन जो लेगा वो अपने पास अनुभव करेगा, जो नहीं लेगा तो क्या अनुभव करेगा, है ना। तो लेने का भी है ना, हमने बाबा से वो प्राप्त किया। बाबा ने पाने, बाबा के समय पर कई ऐसे थे जिन्होंने बाबा की पालना ली, पालना लेके भी चले गए, ऐसे नहीं थे कि नहीं चले गए, कितने आए कितने गए, है हमारे साथ भी कितने आए कितने गए। मैं आपको सुनाती हूं कि जब मैं बाबा के पास आई थी तो एक बार उस समय पर मधुबन में कितनी 74 कन्याएं आई थी, उसमें हम थी। तो मधुबन में कन्याएं आई थी पार्टी बाबा सब जगह से, बाबा को बहुत खुशी होती थी, बाबा को कन्याओं को देख करके बहुत खुशी होती थी, और बाबा हमेशा यही कहते कि ये कन्याएं मेरी होवन हार क्या है, हैंड्स है। बाबा हमारा भविष्य देखता था। तो उस समय इतनी कन्याएं आई तो बाबा खुश हो गया, तो खुश हुए ना बाबा, तो उस समय कन्याओं को क्लास हमारी चंद्रमणि दादी कराती थी, कन्याओं को क्लास के निमित्त दादी को बाबा ने रखा था। तो बाबा ने दादी चंद्रमणि को कहा कि चंद्रमणि दादी, इतनी सारी कन्याएं आई हैं, आप इनका क्लास कराओ। दादी ने क्लास कराया और सब कन्याओं का क्लास कराया, उसमें से 3 कन्याएं निकली बस, और उसमें की एक ये दीदी बैठी। कितने गए, है ना। तो भाग्य किस कौन लेता है, है ना, जो भाग्य लेता है वो बनाएगा ना। तो ऐसे कई आए कई गए, कितने आए कितने गए। अभी हमको 60 साल की यात्रा हमारी हो गई ज्ञान की, 60 साल में हमने कितनों को देखा, कितने चले गए। तो जो रहे वो भाग्य बना रहे हैं। यज्ञ के अंदर भी आप देखेंगे, बाबा ने 450 को यज्ञ में रखा था, और फिर 450 में से कितने रहे, 200 मुश्किल रहे थे। जब बेगरी पार्ट आया, परीक्षाएं तो आती है ना, पेपर तो आते हैं, लेकिन उस पेपर में परीक्षाओं में कई फेल होके चले गए, और जो रह गए उन्होंने मौज की, है ना। तो कोई भी जब होता है तो उस क्षेत्र में आते हैं तो पेपर तो आते हैं, और उन पेपरों में से अगर हम पास हो जाते हैं तो प्राप्त करते हैं। हर एक को अपने अपनी रीति से पेपर आते हैं, लेकिन जब बाबा हमारे साथ है, है ना, तो पेपर बड़े या बाबा बड़ा, बाप सर्वशक्तिवान है ना, है ना। तो बाबा हमारे साथ है तो बाबा साथ होने के कारण कैसी भी पेपर कैसी भी परीक्षाएं हम पास कर लेते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही हम भी परीक्षाएं देते 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 हैं। हम तो कई बार ये सोचते हमने तो कोई परीक्षा ही नहीं दी, जब बाबा साथ में है ना तो कोई परीक्षा है ही नहीं, पेपर है ही नहीं। बाबा को नहीं साथ रखते ना तब पेपर आते हैं। अब हमने शुरू से बाबा को अपना साथी बनाया है, और बाबा ने हमको इतना साथ दिया है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतना बाबा ने हर पल पल सेकंड सेकंड हमने बाबा के साथ का अनुभव किया है। बाबा ने हमसे वायदा किया, हमने बाबा से वायदा किया, हमने बाबा का वायदा निभाया, बाबा ने अपना वायदा निभाया ना? दोनों तरफ से होता है ना, है भाई, मैं बाबा से वायदा करूं है और बाबा मेरे से वायदा करेंगे तो निभाएंगे तो दोनों ना, मैं निभाऊंगी तो वो निभाएगा तो मैं वो तो निभाता है, लेकिन कई बार हम लोग निभाने में क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो निभाता है बाबा। तो मैं सुना रही थी कि बाबा को हमें अपना सदा साथी बना करके चलना है, वो हमारा साथी है, ये अनुभव हमको हर पल पल करना है। और बाबा जब हम उसको साथी बना लेते हैं तो बाबा हमारे वायदे को निभा करके चलता है। तो हम बच्चे भी बाबा के वायदों को अगर निभा के चलते हैं तो बाबा निभाने में हमको शक्ति ताकत देता है। अगर हम बाबा से कोई वायदा करते हैं और संकल्प ये करते कि बाबा से हमने ये वायदा किया और हमको इस वायदे को स्मृति में रख करके चलते हैं, बाबा से मैंने ये वायदा किया है, उस अनुसार अगर हम करते चलते हैं तो बाबा की मदद हमको हर पल हर समय मिलती है। तो मैंने अपने जीवन के अंदर ये बात हमेशा अनुभव में की कि बाबा सदा मेरे साथ है और बाबा मेरे को चला रहा है और बाबा ने कभी भी मुझे ये अनुभव नहीं है कि बाबा ने अपना वायदा मेरे से न निभाया। हम ज्ञान में 66 में आए, 66 में ज्ञान में आए, तब मेरी आयु 13 साल की थी और लौकिक में हमारे फादर थे जो पहले ज्ञान में आए, उसके बाद हम 2 मास के बाद, 1.5 मास के बाद हम लोग सभी ज्ञान में आए। पहले फादर ज्ञान में आए, बाद में पूरा परिवार आया। उसका भी फादर थोड़ा नास्तिक नेचर के थे, ज्यादा भगवान को मानते नहीं थे, और लौकिक माता जी हमारी जो थी वो भगवान को बहुत मानती थी, दोनों अपोजिट थे। और अपोजिट होने के कारण, क्योंकि फादर थोड़ा व्यसन भी था, जैसे दुनिया की लाइफ होती है उस लाइफ में पूरे रचे हुए थे और मम्मी नहीं थी, तो दोनों का आपस में परिवार में झगड़ा चलता था बात बात में, तुम ऐसा। हम बच्चे थे, देखते थे, थोड़ा फादर का क्रोधी स्वभाव था तो हम उनसे दूर ही रहते थे, उनके नजदीक नहीं जाते। तो जब हमारे फादर ज्ञान में आए, उन्होंने कोर्स किया तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। उस परिवर्तन को देख करके हम पूरी फैमिली ज्ञान में आई, मम्मी भी आई और हम सब आए। और कभी भी हमने ये संकल्प नहीं किया है कि ये बाबा नहीं है, ये ज्ञान कैसा है, क्यों, उनका परिवर्तन था। अभी उसके जीवन में इतना परिवर्तन देखा तो लगा कि जरूर इनको कुछ मिला है। तो हम लोगों को मम्मी को यही उत्कंठा हुई कि आप कहाँ जाते हो जो आपका इतना जीवन परिवर्तन हो गया, हमको भी ले चलो। तो मम्मी को कहा लेके जाऊंगा। एक दिन सतगुरुवार था, सेंटर पर भोग लगा था। उस समय पर गुरुवार के दिन संदेशियां भोग लगाती थी। संदेशी के तन में बाबा आते थे और बाबा शिव बाबा आता था। शिव बाबा करके फल देते थे, फूल देते थे। कोई बच्चे होते तो फादर को भी संदेशी ने फूल और फल दिया। वो घर पे लेके आए, आके मम्मी को बोला, मेरे को भगवान ने आज फूल और फल दिया है, भगवान ने मुझे दिया है। हम भी सुन रहे थे, भगवान ने कैसे दिया है? और एकदम निश्चय, ज्ञान के ऊपर हमारे पापा को इतना निश्चय कि भगवान ने मुझे दिया है, मुझे भगवान मिल गया है और अब ये दुनिया विनाश होने वाली है और जो पुरुषार्थ करना है वो कर लेना है। ये हमारे पापा को पक्का हो गया था। फिर मम्मी को आके सुनाया, भगवान ने मुझे आज भगवान मुझे मिला। तो मम्मी कहती, तुमको भगवान मिला तो हमको भी तो ले चलो भगवान के पास। तो कहाँ लेके जाऊंगा? तो एक दिन हम सबको हमारी टर्न आ गया भगवान से मिलने का। हम सबको पूरे परिवार को लेके पापा सेंटर पर चले। उस दिन शिवरात्रि थी, शिवरात्रि थी और शिवरात्रि के दिन हमको बाप लेके गए। वहां प्रोग्राम चल रहा था हॉल में। दो दीदियां स्टेज पर बैठी थी व्हाइट ड्रेस में, लाल लाइट चल रही थी, योग चल रहा था। हम जैसे ही हॉल में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही मेरे को एक शॉक लगा और इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा वो वातावरण, लाल लाइट और व्हाइट ड्रेस। तो वहां मेरे को उसी समय, ना जादू होता है, तो मेरे को तो जादू हो गया था। और उसी समय मेरे को ये लगा कि मुझे ऐसी जीवन बनानी। ब्रह्मा कुमारी क्या है, जीवन क्या है, धारणाएं क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, ज्ञान क्या है, पढ़ाई क्या है, वो कुछ भी समझ में नहीं, लेकिन ये ड्रेस अच्छी, ये ड्रेस ने मेरे को आकर्षित किया। देखो, बाबा के बनने के लिए किसी को कोई बुद्धि में टच होती है बात, है ना? कोई भी बाबा कहते ना, ज्ञान बाबा बोलता है, बच्चे मेरा ज्ञान सेकंड का है ना? सेकंड का ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बाबा के बच्चे बाबा के पास आते हैं, बाबा की कोई बात सेकंड में उसको जच जाती है और वो ही सेकंड पुरुषार्थ कराता है ना? बाबा कहते हैं ना, सेकंड में जीवन मुक्ति है। अब सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे है? क्योंकि टच सेकंड में होता है। कोई भी दिल को बात एक सेकंड में लगती है, वो दिल को छू जाती है ना, वो फिर आगे का पुरुषार्थ कराता है। तो ऐसे ही हमको भी ये ड्रेस भा गया है और लाल लाइट, ये दोनों बातें हमारे दिल को छू गई और बस हमने उसी समय ये निर्णय किया कि मेरे को ऐसी जीवन बनानी है। फिर हमारे जीवन की यात्रा शुरू हो गई, सेंटर पर जाना शुरू कर दिया। अभी ज्ञान क्या है, वो हमको कुछ समझ में नहीं आया, हमको किसी ने कोर्स भी नहीं कराया है। पहले तो ऐसे चले गए, मुरली में चले गए, गाते थे, जाके मुरली सुनते थे। अब पापा ने तो कोर्स किया, हमने तो कोर्स भी नहीं किया। वो कहते चलो क्लास में, और बस एक ही बात, बाबा भगवान मिला है, भगवान इस सृष्टि पर आया है, भगवान नई दुनिया बना रहा है, हम सबको नई दुनिया में जाना है, हमको पुरुषार्थ करना है, तो हमको करना है। तो पापा कहता था मेरे को अकेले को नहीं, मेरे को सारे परिवार को स्वर्ग में ले जाना है, इसलिए हमको सबको उठा उठा के ले जाता था। मैं सबसे बड़ी घर में थी 13 साल की, और मेरा छोटा भाई 2.5 साल का था, हम 5 भाई बहने थे। सबको सुबह में उठा के 3 बजे उठा देते थे, और हम नहा धो के तैयार होके 5 बजे सेंटर पर जाते थे। 3 किलोमीटर सेंटर था, रोज हमको सुबह उठा के लेके जाते थे, पर हम कभी मना नहीं करते थे। जो पापा बोलते चलो चलो, तो हम भी कहते चलो चलो, क्योंकि दिल में तो जचा हुआ था। सभी जाते थे, ऐसे रोज क्लास में जाना शुरू किया। क्लास में जाते जाते पापा ने बाबा को लेटर लिखा कि बाबा मैंने आपको पहचाना, आप मेरे पिता हो, अब मुझे आपसे मिलना है। हैं? तो पहले तो ये नियम था ना कि भाई धारणाएं चाहिए 8 मास की प्यूरिटी की। तो पापा ने जो लेटर लिखा ना, तो बाबा ने तुरंत लेटर लिख दिया बच्चे आ जाओ। तो 3 मास के अंदर ही हम सारा परिवार बाबा से मिलने के लिए मधुबन आए। सातों आए मधुबन में पहुंचे, अब बाबा से मिले। जब बाबा से मिले तो आप, मैं सुना रही थी कि मुझे ये व्हाइट ड्रेस ने इतना आकर्षित किया, लाल लाइट ने इतना आकर्षित किया, तो बाबा ने क्या नहीं किया होगा है? बाबा तो फरिश्ता था एकदम। तो बाबा को देख करके तो जैसे कि इतना करंट लगा कि हम कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे थे ना। तो बाबा के देख के बाबा ने कहा आओ बच्चे, आओ बच्चे। बाबा इतना प्यार से बोलता था, आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। तो वो जैसे कि आत्मा को ना खींच लेता था, वो प्यार बाबा का इतना जो था, वो आत्मा को जैसे कि आकर्षित करता था। तो हम बाबा से मिले, बाबा से बैठे, बाबा से बातचीत की, पूरा परिवार रोज मधुबन में, मुरली भी सुनते थे, बाबा सबको बुला के पर्सनल भी मिलते थे, क्योंकि उस समय तो बहुत पार्टियां नहीं होती थी, थोड़े लोग आते थे। हम जब आए थे 30-35 लोग आए हुए थे है? तो बाबा से मिलना हो तो बार बार मिलना, खाने में बैठने बाबा मिलता था, जाते थे आते थे तो बाबा से मिलना होता था। अब मैं तो जैसे ही बाबा के पास आई, पता नहीं मेरा क्या पार्ट था, मैं बाबा के एकदम क्लोज चली गई, और बाबा भी मेरे को बच्ची 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 करके इतना प्यार करता था, वो बाबा को छोड़ती ही नहीं थी। फिर हमारे 7 दिन के अंदर जाने का बना, तो जाना का प्रोग्राम बन गया, जाना है अभी। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे नहीं जाना है, मुझे तो ब्रह्मा कुमारी बनना है, और मुझे तो आपके पास ही रहना है। तो बाबा ने अच्छा, तो हम बाबा को बोलती रही, बाबा मुझे आपके पास रहना है, आपके पास रहना है। तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची अभी तुम छोटी हो, क्योंकि हम 13 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी, तो कहा बच्ची तुम ना हाई स्कूल पढ़ाई करके फिर आना। तो बाबा ने ऐसे मेरे को बोला, तो मैंने बाबा को क्या जवाब दिया, मैंने बाबा को कहा बाबा आप रोज मुरली में सुनाते हो, विनाश हो जाएगा, है ना, जो करना है वो कर लो। अब आप मेरे को बोल रहे हो कि तुम पढ़ाई करने जाओ, और अगर मैं पढ़ाई करने गई विनाश हो गया तो मैं क्या करूंगी, है? इतना बाबा से मतलब क्लोज हो गई कि जो हम बाबा से बातचीत कर सकती थी। तो मैंने बाबा को बोला, तो बाबा मेरे को हंसते हंसते क्या बोलता है, बच्ची बाबा तेरे लिए विनाश रोक लेगा। और सचमुच मेरे लिए रोका बाबा ने, है ना। तो जब बाबा ने मेरे को ये कहा, बच्ची बाबा तेरे लिए विनाश रोक लेगा, तो अब मैं क्या बाबा को बोल सकती थी, है? फिर तो मजबूरी में मेरे को जाना ही पड़ा। फिर मैं चली गई, जाकर के पढ़ाई की। फिर बीच में बाबा के पास हम 6 मास में आते रहे, क्योंकि पापा को बहुत लगन थी और वो सबको ही लेके आता था, हा? पूरे परिवार के सहित ही हम बाबा के पास आते थे मिलने के। तो ऐसे 2-3 बार मिलने के लिए आना हुआ। 1.5 साल फिर हम वहां पढ़ाई करके, हाई स्कूल पास करके, जैसे मेरी एग्जाम पूरी हुई तो फिर मधुबन आने का हमारा प्रोग्राम बना। फिर हम यहाँ मधुबन में आए, हमारी दीदी हमको लेके आई साथ में। फिर हम 15 दिन यहाँ रहे, फिर उसके बाद जाने का फिर प्रोग्राम बना। तो मैंने बाबा को बोला, मैं तो नहीं जाएंगी और मैं आपके पास ही रहूंगी। तो फिर बाबा ने मुझे मधुबन में रखा और हमारी दीदी चली गई मेरे को बाबा के पास छोड़ करके। और मेरे को तो लॉटरी मिल गई बाबा के पास रहने की। मैं बाबा के पास रही मधुबन में। तो ऐसे बाबा के पास रही, तो बाबा से इतना मेरे को, मैं बाबा को नहीं छोड़ती थी। जहां बाबा जाता था मैं बाबा के साथ जाती, जहां बाबा जाता बाबा के, क्लास में भी बाबा के, झोपड़ी में भी बाबा वहीं जाए, बाबा ऑफिस में जाता मैं वहां ऑफिस में जाती। मतलब जा बाबा बैठता मैं बाबा के पास खड़ी रहती। तो ऐसे ऑफिस में बाबा बैठा था कुर्सी पर और मैं बाबा के पास खड़ी थी, ऐसे बाबा के गले में हाथ डाल के, जैसे नहीं माँ बाप बच्चे माँ पिता के गले में हाथ डालते हैं बैठते हैं, इतना मेरा बाबा से मतलब प्यार था कि मैं बाबा को नहीं छोड़ती थी और बाबा भी मुझे नहीं छोड़ता था। हाँ बच्ची बच्ची चलो बच्ची चलो बच्ची चलो बच्ची, ऐसे बाबा ले जाता था मेरे को। तो मैं ऐसे खड़ी थी, तो उस समय पर लच्छू दादी आई और दादी ने आके बाबा को बोला कि बाबा आज आपका जो भोजन बनाती है ना वो बहन घर चली गई है, गई है, तो अब कौन बनाएगा। तो बाबा ने कहा कि ये बच्ची बनाएगी, ये बनाएगी। अब उस समय पर हम 15 साल के थे, 13 के ज्ञान में आई, 15 साल 1.5 साल की, 15 से भी कम ही थी। तो बाबा ने कहा कि ये बच्ची बनाएगी। मेरे को भी ज्यादा खाना नहीं आता, थोड़ा बहुत साधारण आता था घर में, थोड़ा मम्मी को हेल्प करते थे। तो बाबा ने कहा ये बच्ची मेरा खाना बनाएगी। फिर तुरंत ही बोला कि बच्ची इस बच्ची को तुम बाबा का खाना बनाना सिखाना। बस फिर तो हमको ये लॉटरी मिल गई, हम बाबा का खाना बनाना शुरू कर दिया। लच्छू दादी मेरे को सिखाती थी और मैं बनाती थी, बनाती थी और बाबा को खिलाती भी थी। हा? तो खाना बनाना मैं बाबा के खाने से सीखा और खाना बनाती भी, तो बाबा इतना प्यार से खाते थे, कोई भी चीज बनाती बाबा कहते बहुत अच्छी बनाई बच्ची, बहुत अच्छी बनाई। बाबा महिमा भी करता था, प्यार भी बहुत करता था। और जब खाना बनाने बैठती थी तो बाबा किचन में आके मधुबन में बाबा का पांडव भवन में बाबा का कमरा है ना, वहां बाजू में ही बाबा का छोटा किचन था और ऐसा एक टेबल रखा हुआ था, उस पर ही हम खाना बनाते थे। तो बाबा की हाइट लंबी थी तो बाबा ऐसे ऐसे झुक के मेरे को पूछता था, बच्ची किसका खाना बना रही हो? तो हम याद रखते थे क्योंकि बाबा हमारा पेपर लेता था, तो मैं याद रखती थी, बाबा शिव बाबा के रथ के लिए भोजन बना रही हूं। तो बाबा जब पूछता तब मैं ऐसे ही बोलती, बाबा आपके लिए नहीं बना रही, ऐसे नहीं बोलती थी, बाबा शिव बाबा के रथ के लिए मैं भोजन बना रही। तो फिर हम बनाती थी, जितना प्यार से बनाती उतना ही बाबा मुझे प्यार करता था। तो मैं बाबा को फिर खिलाती भी थी। तो मेरे को ये बाबा का भोजन बनाना तो एक निमित्त था, लेकिन बाबा के प्यार की पालना मुझ आत्मा को मिली, और वो भी जब बाबा की कर्मातीत स्थिति थी। 68 में जब मैं आई थी तो यहां पर सितंबर मास में आई थी और बाबा अव्यक्त हुए 69 जनवरी में। तो मैं 3 मास यहां मधुबन में बाबा का खाना बनाया दिसंबर तक और बाबा के साथ रही। तो बाबा से इतना प्यार हो गया था कि मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती। सुबह 5 बजे बाबा के कमरे में जाती थी, रात्रि को 11 बजे बाबा सोते थे तब मैं बाबा के कमरे से जाती थी, दिन में 1 घंटा बाबा रेस्ट करते थे तब मैं जाती थी, बाकी सारा समय बाबा के साथ रहती थी। अब सोचो बाबा मुझे कितना प्यार किया होगा, है पूरा, जैसे मैं तो बाबा में ही रंग गई थी, है? तो ऐसे ही 3 मास पूरा हुआ, फिर हमारी दीदी आई वापस। आई तो बाबा को बोला, बाबा अभी मैं प्रभा को ले जाऊंगी। तो उन्होंने ऐसे बोला मैं ले जाऊंगी, तो मैंने बाबा को बोला नहीं बाबा मैं नहीं जाने वाली, अब बाबा को छोड़ के कौन जाएगा, जाएगा? मैं तो कहा मैं नहीं जाऊंगी, वो जीत करे ये लेके जाऊंगी, मैं कहूं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो दोनों की जीत चली, वो कहे ले जाऊं मैं कहूं नहीं जाऊं। तो फिर बाबा ने एक बार कहा कि बच्ची बच्ची की दिल नहीं है ना तो नहीं ले जाओ। तो फिर भी हमारी दीदी तो मानी नहीं, नहीं बाबा, क्यों, क्या कारण था कि हमारी जो दीदी थोड़ी एजेड थी, ब्रिजमन भाई आप जानते हैं उनकी लौकिक मम्मी थी, उनको सभी यज्ञ में चाची बोलते थे, वो हमारी दीदी थी मथुरा में। तो उनको जाना था नांगल, तो कहा मैं बालकी को लेके जाऊंगा, छोटी बच्ची को साथ में लेके जाऊंगी। तो बाबा को बोला, बाबा मैं नांगल जाने वाली हूँ इसलिए मैं इसको ले जाएंगी, फिर मैं इसको भेज देंगी। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची चली जाओ, बाबा भी मजबूर होकर बोल दिया अच्छा बच्ची चली जाओ। तो भी मैं बाबा को बोली नहीं बाबा मैं नहीं जाएंगी, फिर भी मेरे को जबरदस्ती हमारी दीदी लेके चली। अब जब बाबा से मैं छुट्टी ले रही थी, अब इतना प्यार था मेरे को, अब बच्चे होंगे तो दूसरा क्या बोलेंगे, रोना ही आएगा ना, तो मेरे को इतना रोना आया, मैं फपक फपक के रो रही थी, बाबा मैं नहीं, बाबा मैं नहीं जाऊं। तो भाई साहब ब्रिजमन भाई वहीं खड़े थे, मेरे को बोला प्रभा तुम तो इतना रोती हो जैसे बाबा से फिर मिलने नहीं आओगी, आना ना, फिर आना है ना। मैं बोली, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बात पक्की थी, विनाश हो जाएगा, जो करना है वो कर लो, ये पक्का था। तो मैं क्या बोली, मैंने कहा भाई साहब विनाश हो जाएगा, पता नहीं कब विनाश हो जाएगा, मैं बाबा से आके मिल सकूंगी कि नहीं मिल सकूंगी, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा बोल दिया भाई साहब को, इस शरीर का क्या भरोसा है, विनाश हो जाएगा, पता नहीं बाबा से मिलने आ सकूं या नहीं आ सकूं। तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्ची आना। फिर भाई साहब ने कहा हाँ हम लेके आएंगे, चलो अभी तो चलो। तो बस हमको ऐसे लेके चले गए। तो 24 दिसंबर हम मधुबन से गई और जाके फिर हम वहां नांगल में गए, वहां में रही। 18 जनवरी बाबा अव्यक्त हुए। पर मैं वहां रह तो रही थी, शरीर वहां था, आत्मा तो मेरी बाबा के पास ही थी। बस बाबा बाबा बुद्धि में वही बाबा बाबा, जो बाबा के साथ जो बिताए दिन थे वही याद आते थे मेरे को। फिर बाबा व्यक्त हुए तो समाचार आया मधुबन से कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस समय हमारी दीदी और भाई साहब मेरे को वहां ही छोड़ के मधुबन आ गए। मधुबन आ गए और मेरे को वहां नहीं, क्यों, हम तो छोटे बच्चे थे, हमको कौन इसमें ले आएगा। वो जल्दी जल्दी उन्होंने दोनों ने तैयारी की, आ गए, वहीं छोड़ दिया। हम कुछ बोल ही नहीं सकते उस समय, तो मार रहे, तो अब क्या करेंगे। मेरे को बहुत रोना था, बहुत रोना है। और एक बात बुद्धि में थी, क्योंकि मुरली की कई पॉइंट्स बुद्धि में, एक तो विनाश की पॉइंट थी और एक बात ये बुद्धि में आती थी, बाबा हमेशा मुरली में सुनाते थे, बच्चे जिन बच्चों का योग होगा वो अंत समय मेरे पास होंगे। तो मेरे को ये आया बुद्धि के अंदर कि बाबा ने कहा जिनका योग होगा वो अंत समय मेरे पास होंगे, तो इसका मतलब मेरा योग नहीं था इसलिए मैं बाबा के पास नहीं जा पाई। ये मैंने अपने बुद्धि में बिठा दिया, मेरा योग नहीं था इसलिए मैं बाबा के पास नहीं गई। अब इस बात को सोच सोच के और रोना आए, एक तो अकेली है, माताओं के साथ में छोड़ के आए, और बस यही कि मेरा योग नहीं था और मैं बाबा के पास नहीं जा पाई। ऐसे आता रहे और मैं रोऊं, बस बाबा को याद करूं, बैठूं, बाबा बाबा बाबा, बुद्धि सारा टाइम बुद्धि में से बाबा निकलता ही नहीं था, रोना भी बंद नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन दो दिन के, एक दिन के बाद मेरे को रोना आता था, तो मैं ऐसे खटिया पर सोई हुई थी, लेटी थी, नींद तो आती ही नहीं थी, लेटी थी, तो बाबा मेरे सिर पे आके खड़ा हुआ और मेरे सिर पर बाबा ने हाथ रखा और बाबा ने मेरे को कहा बच्ची मैं तो तेरे साथ हूं, मैं कहां गया हूं, बच्ची मैं तेरे साथ हूं ना, मैं कहां गया हूं। जैसे बाबा बोलते थे, बात करते थे, मुझे ऐसे ही फीलिंग जैसे साकार में बाबा मेरे साथ खड़ा है और बाबा मुझे मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे को बोल रहा है बच्ची मैं तो तेरे साथ हूं ना, मैं कहां गया हूं, साथ हूं ना तेरे। तो मेरे को ये फीलिंग आई बाबा मेरे साथ है। ये जब पक्का हो गया ना तब मेरा रोना छूटा, बाबा मेरे साथ ही है, मैं कहीं नहीं गया हूं, बच्ची मैं तेरे साथ हूं। ये बाबा ने मुझे अनुभव कराया, बच्ची मैं तेरे, और बाबा फिर जहां भी मैं हूं बाबा मेरे साथ साथ, मेरे को ऐसे लगता बाबा मेरे साथ ही घूम रहा है। जैसे मैं मधुबन में बाबा के साथ साथ घूमती थी ऐसे ही मेरे को बाबा ने साकार का अनुभव कराया कि बाबा मैं, बाबा मेरे साथ है। ऐसे फिर मैं भाई साहब और वो आ गए वहां। पर उसके बाद 2 मास के बाद फिर मैं वहां से मधुबन आ गई, क्योंकि बुद्धि में तो मधुबन ही था। बड़ी दीदी का फोन आया, उनके फोन पर मैं उनसे फोन पर बात की, कहा भाई साहब से बात कराओ, उससे पहले मैं उनसे बात की, मैंने कहा मेरे को मधुबन आना है, मेरे को अभी यहाँ नहीं रहना है। तो रोती जाऊं, फोन पे बात करती जाऊं, मेरे को मधुबन, मेरे को बोला हाँ मैं बुला लेती हूँ तेरे को, तुम भाई साहब से तो बात कराओ। फिर भाई साहब से बात कराई और फिर मेरे को भाई साहब ने मधुबन भेज दिया और मैं मधुबन में आ गई। तब से मैं मधुबन में 2.5 साल रही, मधुबन में दादियों के साथ रही, अब एक बाप दासस भी मिलती रही। और फिर उसके बाद मेरे को दादी ने एक बार 6 मास के लिए नेपाल भेजा, वहां भी जाके आई, वहां भी जिन नहीं लगा क्योंकि जो मधुबन में एक बार बाबा के पास रह गए उनका कहीं दिल नहीं लगेगा। तो मैं वहां गई, आ गई वापस, फिर दादियों के साथ रही। फिर दादियों ने मेरे को क्या किया, एकदम फुसला के बॉम्बे भेजा, 1 महीने के लिए तेरे को भेज रहे, ज्यादा नहीं 1 महीना, आज तक 1 महीना हुआ ही नहीं है। सेवा के लिए दादियों ने भेज दिया। तो फिर ऐसे सेवा करते रहे करते रहे, और समय प्रति समय फिर दादियां मेरे को मधुबन में सेवा के लिए हमेशा बुलाती रही। और मैं हमेशा, क्योंकि मधुबन की जो आकर्षण थी, बाबा की जो आकर्षण थी ना, वो आज तक भी नहीं गई। वही मधुबन, वही बाबा, मेरे को मधुबन जाना है, मधुबन। और जब भी दादियां मेरे को सेवा के लिए बुलाती थी, मैं हमेशा सेवा के लिए सदा आती रही। उसके बाद तो मैं बॉम्बे गई, फिर भरूच गई, भरूच में भी 75 से रहती हूँ। तो मधुबन में दादी मेरे को हमेशा सेवा के लिए 6 मास मधुबन रखती थी, क्योंकि मधुबन में पार्टियां बाबा से मिलने के लिए आती थी। तो जो भी पार्टियां आती थी उनकी सेवा के लिए ड्यूटी होती थी, खाना खिलाने की, बनवाने की, ये सब की ड्यूटी दादी ने मेरे को ही दी थी। क्योंकि बाबा का खाना बनाया तो वो संस्कार भर गया, वो संस्कार भरा, बाबा ने मेरे को सिखाया सब कुछ। और फिर बाबा मेरे को एक बार ऐसे भी कहा कि बच्ची तुम अगर भोग बनाना नहीं सीखेंगी तो तुम सेंटर में रहेंगी तो क्या सेवा करेंगी, कोई भी स्टूडेंट आएगा उनको टोली तो खिलानी पड़ेगी ना, तो टोली तो सीखनी पड़ेगी, तो बाबा ने मुझे कहा। तो मैंने कहा जी बाबा मैं सीखूंगी। तो मैंने वो टोलियां बनाना भी मैं सीखी, एक एक टोली बनाना सीखी। आज कोई भी ऐसी टोली नहीं है जो प्रभा दीदी को नहीं आती होगी। और बाबा ने ही वो संस्कार भरा, मैं बाबा का खाना बना करके सीखी और सारा ही किचन का मैनेजमेंट करना भी सीखी। आज यज्ञ के अंदर दादियों के पास कोई भी प्रोग्राम होते थे मधुबन में, दादी सदा मेरे को सेवा के लिए बुलाती रही और मैं सदा सेवा के लिए आती रही। तो दादियों का भी मुझे इतना प्यार मिला, बाबा का भी मुझे प्यार मिला, और मैंने जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य रखा था कि मुझे जो बाबा कहे, जो दादियां कहे, हमेशा हाजी करना है, आज्ञाकारी का पाठ बजाया, कभी नाची नहीं। जैसे हमारे गोविंद भाई ने सुना है ना कि दादी हमेशा फोन करती थी तो हम आ जाते, फोन आए प्रभा ये प्रोग्राम है जी, सब छोड़ के मैं आ जाती थी है? और हमेशा यही कि बाबा की सेवा में मुझे सदा तत्पर रहना है, आज्ञाकारी रहना है। इस आज्ञाकारी पने ने, हांजी के पाट ने मुझे सदा हल्का रखा, आज भी मैं हल्की हूँ। मुझे कभी भी बाबा ने कितनी भी बड़ी ड्यूटियां दी होंगी लेकिन कभी भी मुझे भारीपन नहीं लगता है। एक बार समय की मैं बात बताती हूँ, शांति वन में, जब शांति वन में पहला मेला लगा था तो उस समय पर पहले मेले में 10,000 भाई बहनों को बुलाना था। तो यज्ञ में कभी पहले 10,000 लोग नहीं आए थे। तो मधुबन में 10,000 का भोजन बनना बनवाना दादी ने मेरे को ड्यूटी दी थी कि प्रभा तुम ये करना, और मैं कराती थी। तो दादी ने जब भी जो ड्यूटी दी, बाबा ने जब जो ड्यूटी दी, सदा हाजी का पाठ रहा और उसके कारण मैं सदा रही। क्योंकि देखो, जब बाबा या बड़े हमको कहते हैं कि ये कार्य तुमको करना है, अगर हमको नहीं भी आता है तो भी क्या होगा, हां करने से बाबा हम बच्चों को मदद करता है और हम सीखते हैं, है ना। हम कोई भी चीज हम कहें भाई हमको ये नहीं आती है, तो ये कह के हम अपने भाग्य को लकीर लगाते हैं, हमेशा ये बुद्धि में, हां हम करेंगे, प्रयत्न करेंगे। अच्छा नहीं आता है, पूछो बड़ों से कि भाई कैसे हमको करना है, तो पूछने से करेंगे, हिम्मत रखेंगे। बाबा कहते हैं ना, हिम्मत है बच्चे तो मदद है। ये हमारे जीवन का अनुभव है, हमेशा हमने हिम्मत रखी तो बाबा ने हमको हमेशा मदद, हर पल पल बाबा मदद करता है। मैंने तो अपने जीवन के अंदर ये अनुभव किया कि बाबा मुझे कदम कदम पर बाबा मुझे मदद करता है। ऐसा कोई कदम नहीं होगा जो बाबा मुझे मदद ना करता हो, और मैंने हमेशा बाबा को अपना साथी बनाया। जो मैंने कहा ना कि बाबा ने मुझे वो अनुभव कराया था कि बच्ची मैं बाबा तेरे साथ है, बाबा कहीं गया नहीं है, आज तक मेरा यही अनुभव है कि बाबा सदा मेरे साथ है और बाबा मेरे से कार्य कराता है, है? तो सदा बाबा का साथ का अनुभव किया। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो खाली इंस्ट्रूमेंट है, करण करावन हार तो बाबा है, उसकी शक्ति कराती है, वो कराता है, हाथ हमारे हैं, कार्य उसका है, शक्ति उसकी है। तो बाबा को साथ रख करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, उसको साथी बनाकर, तो उसकी मदद मिलती है, है? भगवान को यूज करना सीखो। हमने अपने जीवन में भगवान को यूज किया है, है? हमने ये नहीं, मैंने किया नहीं, बाबा ने किया है, मेरे द्वारा बाबा ने किया है, बाबा ही कराता है, करण करावनार वो है, हाथ हमारे हैं, कराने वाला वो है। सदैव इस लक्ष्य को लेकर के हमने हरेक कार्य किया तो बड़े से बड़े कार्य बाबा ने कराए। कोई कार्य ऐसा नहीं है, हमने ये अनुभव किया कि हमारे जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो असंभव हो, बाबा ने सब कार्य संभव कराए और कराता रहता है और कराता रहेगा। किसका हाथ हमने पकड़ा है, उस सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ा है, उसने हमारा हाथ पकड़ा है और हमने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो कराता है। तो हमेशा हाँ जी करो, आज्ञाकारी बनो, तो उसमें हमको दुआएं मिलती है, शक्ति मिलती है। हम ना करके अपने भाग्य को लकीर लगा देते हैं। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है कि मैंने कभी भी ना बाबा को ना की, ना दादियों को ना की, हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ा तो आज हम इस स्टेज पर बैठे। तो बाबा ने ही हमको चलाया, अब भी बाबा अपना कार्य करा रहा है, क्योंकि कार्य उसका है, कराने वाला वो है, हम सब तो आपस में निमित है, है ना। तो हम सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा हम सबको वो शक्ति ताकत सब देता है, वो ही कराता है और वो कराता भी रहेगा। ये है मेरा अनुभव। ओम शांति।